بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. چونکہ آج پہلی رات ہے کوئٹہ کے 86 شہداء کی تدفین کے بعد، تو مجلس کے آغاز میں پہلے تو ایک ریکویسٹ ہے کہ ان شہداء کوئٹہ کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اور اگرچہ کوئٹہ کے یہ شہداء، جن میں سے بعض جن کا تعلق پاکستان کے دوسرے علاقوں سے تھا اور ان کی میتیں ان کے اپنے علاقوں میں لے جائی گئی تھیں اور وہ وہاں دفن کیے گئے تھے، لیکن یہ 86 شہداء شہیدان راہ خدا ہیں، اور شہیدان راہ خدا کے حوالے سے ہمارے یہاں نماز ہدیہ قبر یا ہدیہ میت یا وحشت کا رواج نہیں، نماز وحشت. لیکن بہرحال حکم اسلامی اور وہ جو مستحب عمل ان کے لیے بھی ہے، اگر آپ کو آج کی رات کسی وقت بھی یہ شہداء کوئٹہ اس طرح یاد رہیں کہ آپ ان سب کے لیے مل کر ایک دو رکعت نماز وحشت قبر پڑھ سکیں، جس کا بہترین وقت تو نماز عشاء کے بعد ہوتا ہے، لیکن فجر تک کسی وقت بھی، نہ صرف یہ کہ یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے بلکہ اگر کوئی خاص ڈرائیونگ کا رسک نہ ہو تو یہ نماز بھی سنت نماز ہونے کی بنا پر چلتے پھرتے گاڑی میں بیٹھ کر حتیٰ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی پڑھی جا سکتی ہے. صرف اس لیے میں نے یاد دلایا، وضو ضروری ہے، باتیں نہ کی جائے نماز کے دوران، صرف اس لیے یاد دلایا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض افراد کا گھر یہاں سے اتنے فاصلے پر ہو کہ وہ گھر پہنچنے تک گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی اس عمل کو انجام دے سکیں. شہداء کوئٹہ پاکستان کی تاریخ اور ایک حد تک 21st سینچری میں پوری دنیا میں صاحبان ایمان پر جو ظلم کیا جا رہا اس کو دیکھتے ہوئے، موجودہ دنیا کے حالات میں یہ اتنی بڑی کامیابی کہ جس نے ایک بار 40 کے اس میسج کو دوبارہ ہماری میموریز میں ریفریش کر دیا، خالی میموری کی حد تک نہیں پریکٹیکل لائف میں اس پہ عمل کرنے کے لیے. 40 کا میسج کیا؟ ایک سوال جو میں ہمیشہ 11th سفر سے لے کے 8th ربیع الاول تک کی مجلسوں میں کرتا ہوں. 11th سفر سے 20th سفر 40 کا اشرہ تو ہوتا، لیکن اس کے بعد بھی جہاں جہاں مجھے چانس ملتا ہے میں یہ سوال ریپیٹ کرتا ہوں کہ وائی عاشورا از گریٹر دین 40 ڈے ان ایوری اسپیکٹ. مگر جو زیارت کرنے والے کربلا جاتے ہیں، عاشورے میں میکسیمم جو میں نے ریکارڈز جمع کیے ہیں میکسیمم 4 ملین اب تک لوگ گئے تھے، اور 40 میں 21 سے 22 ملین. پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ کوئی اس کا کوئی پروف لائیے، لیکن اب وکیپیڈیا کی وہ ای میل اتنی زیادہ سرکولیٹ ہو چکی کہ 40 کی گیدرنگ از دا لارجسٹ پیسفل گیدرنگ ان دا ورلڈ، بلکہ فرسٹ 5 میں فرسٹ 4 40 کے 4 مختلف سالوں کا وہ زائرین کا کراؤڈ ہے، تو 4 ملین عاشورے کو آتے ہیں اور 22 ملین 40 کے دن آتے ہیں. مومن کی سائن، یہ ساری چیزیں آپ 40 کی مجلس میں کسی نہ کسی عالم سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسجد اور امام باڑے میں سن چکے ہیں. पूरी स्पीच रिपीट नहीं करना, सिर्फ एक सवाल ये कि साइन ऑफ मोमिन ज़ियारत आशूरा को नहीं बताया गया, ज़ियारत अरबईन को बताया गया। अभी अभी जो अनाउंसमेंट हो रहा था उसके हिसाब से आज के मजलिस के बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोग्राम है वो 11th इमाम की शहादत और वफात है, तो ये 11th इमाम की हदीस पढ़ी जाती है ना कि मौला अलामत मोमिन क्या है, तो पांच साइन बताई जिनमें फर्स्ट ही ज़ियारतुल अरबईन, ज़ियारत अरबईन। यकीनन इस मिस अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना जरूरी, ज़ियारत अरबईन से मतलब ज़ियारत पढ़ना नहीं, फिजिकली हमारा प्रेजेंस करबला में, वो ज़ियारत से मतलब है टू विजिट, जाना, ज़ियारत करना। ये बात भी मैंने इसलिए कह दी कि आका हुसैन की जितनी फेमस ज़ियारतें, ये ज़ियारत के अलावा बहुत सारे हमारे लिए दुआ के बेनिफिट भी लाती, रोजी, कोई रोजी की परेशानी में मुब्तला हो तो ज़ियारत वारिसा से बेहतर इसके लिए कोई अमल नहीं। जिंदगी और मौत का प्रॉब्लम, ज़ियारत आशूरा के अमल से बेहतर कोई अमल नहीं है। आप देखते जाइए आका हुसैन की जितनी ज़ियारतें, यहां तक लोगों का ये एक्सपीरियंस है, मैंने भी कई बार मजलिसों में पढ़ा है, तो जब हम मजलिस में एक बात पढ़ते हैं तो होता क्या है कि नेक्स्ट ईयर जब हम उस इलाके में जाते चार पांच आदमी विटनेस बन के आते हैं कि मौलाना लास्ट ईयर जो आपने पढ़ा था अपनी नेक्स्ट मजलिस में हमारा जिक्र भी शामिल कर दीजिए कि हां हमें इतना बड़ा प्रॉब्लम था, इस दुआ की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो अब हत्ता आका हुसैन की मुख्तसर जियारत, अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्ने हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला साबिल हुसैन, इसके भी इतने बेनिफिट है सिर्फ ये एक सेंटेंस। जियारत अरबईन के लिए आपको अलग से कहीं पर कोई रिवायत या उलमा का जुमला नहीं मिलेगा कि रोजी के लिए पढ़ो तो ये फायदा है, बीमारी के लिए पढ़ो तो ये फायदा है, अगर औलाद तुम्हारी मिसगाइड हो रही है इसको पढ़ो तो वो सीधे रास्ते पे आएंगे, हर जियारत के बेनिफिट इसके नहीं। क्योंकि यहां पर अरबईन की जियारत में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि वो जो जियारत हम पढ़ते हैं एवरी अरबईन मस्जिद अली और मुख्तलिफ इमामबाड़ों में, वो नहीं, फिजिकल जियारत। अरबईन की जियारत की इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है कि सवाब के एतबार से अरबईन की जियारत इज ग्रेटर एंड हायर देन आशूरा। जिहाद आशूरे का है, हुसैन कमीशन आशूरा था अरबईन, तो वन ऑफ द रीजन। अब इसमें तो मैं पूरा अशरा हर साल पढ़ता हूं, इस साल भी कैलिफोर्निया में इसी टॉपिक पे मेरा अशरा था, लेकिन वन ऑफ द रीजन अरबईन अहले बैत की उस विक्ट्री का नाम है कि जिसमें दुश्मन भी ये मान रहा कि अहले बैत कामयाब हुए। अल-फज़लु मा शहिदत बिहिल आदा, मौला का एक फरमान है कि असल कामयाबी और फजीलत वो है कि दुश्मन भी अपनी जबान से ये मान ले। आशूरे के दिन जब आका हुसैन का सर काट के नो के नैजा पे बुलंद किया गया था, वह हुसैन की कामयाबी का ऐलान था, वह हुसैन की विक्ट्री थी कटा हुआ सर नो के नैजा पर, मगर हुसैन वाले ये मान रहे थे यजीद तो कह रहा था मैं जीत गया। दैट्स द रीजन कि उसने आशूरे के बाद हर जगह सेलिब्रेशन का ऑर्डर दिया। अहले बैत कूफे में गए जस्ट लाइक ईद, कूफे का डेकोरेशन देखिए, कूफे की लाइटिंग देखिए, कूफे का एटमॉस्फेयर देखिए। अहले बैत शाम गए डमस्कस, जो इस वक्त खुद एक प्रॉब्लम है, और अगरचे रिवायतों में कंडेम किया गया है उस आदमी को जो आखिरी इमाम के जुहूर की कोई डेट बताए, मगर इट अपीयर्स कि अगर सीरिया के हालात करंट सिचुएशन ऐसी ही रही तो बशार असद को हटाने की तैयारी नहीं है, किसी सुफियानी को लाने की प्रिपरेशन। मगर यह जुमला खुद अपनी जगह एक मजलिस चाहता, क्योंकि बैतुल कायम में जो मेरी दो मजलिसें टुमारो डे आफ्टर टुमारो वो हैं पाकिस्तान के शोहदा के लिए, और पाकिस्तान के शहदा का सीरिया के हालात से बहुत ही क्लोज लिंक बनता, तो ये मैं इंशाल्लाह वहां बताऊंगा। मुझे मालूम है कि आप यहां रहते हैं, आपके लिए वहां जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे लिए एक घंटे की मजलिस में ये सारे टॉपिक्स कवर करना बहुत मुश्किल है। बहरहाल सीरिया खुद इतना सीरियस मसला है कि इसको मीडिया की खबरें सुनकर अपने घर में ना बैठ जाइए, सोचना व्हाट इज बिहाइंड द कर्टन। हमारे सामने खाली बशार असद का नाम आ रहा है, लेकिन असल प्लानिंग क्या? लेकिन उसको रखिए, उस टॉपिक को एक तरफ। उसी सीरिया में जब अहले बैत अतहार पहुंचे, सेलिब्रेशन था, ईद थी, यजीद ने अपने दरबार में सारी दुनिया के एम्बेसडर बुलाए थे, नॉट ओनली मुस्लिम गवर्नर्स, रोम का सफीर था, और हर अभी अभी जो एक अनाउंसमेंट हो रहा था वो इंग्लिश में था, और इंग्लिश ना मुझे आती है और ना ही स्टिल मेरे फरिश्तों को, इसलिए मैं पूरा तो नहीं समझ सका, लेकिन कुछ इंटरफेथ की भी बात हो रही थी पैगंबर के हवाले से। यजीद ने अपने दरबार में ये इंटरफेथ एक किस्म का सेलिब्रेशन बनाया था, यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम बैठा था जो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ और हुसैन के नाम पे शहीद हुआ, ईसाइयों का सबसे बड़ा आलिम यजीद के दरबार में बैठा था, वेटिकन का रिप्रेजेंटेटिव, और जो ईसाइयत के दो हिस्से हैं, चर्च अलग गवर्नमेंट अलग, तो कैसर रोम यानी रोमन एम्पायर के सीजर का एम्बेसडर भी बैठा था, और ये तीनों शहीद हुए हुसैन के नाम पर। एक मुसलमान को गैरत नहीं आई थी, यहूदी आलिम हुसैन के नाम पर अपनी जान कुर्बान करता, ईसाई आलिम अपनी जान हुसैन के नाम पे कुर्बान करता है, रोम का एम्बेसडर जो रिलीजियस ड्यूटी में नहीं बुलाया गया था वो अपनी जान कुर्बान करता है, लेकिन दैट मींस कि उस दिन दरबार में कितना बड़ा सेलिब्रेशन मनाया जा रहा था। तो सेलिब्रेशन आदमी कब मनाता? जब उससे 100% श्योर हो कि आई एम विक्टोरियस। यजीद आशूरे को अपनी कामयाबी समझ रहा था, लेकिन अरबईन का दिन खुद यजीद को अपनी गलती मानना पड़ी और उसे यह अनाउंस करना पड़ा कि आई एम द लूजर और अहले बैत आर द विक्टोरियस। ये जो पास्ट और प्रेजेंट टेंस है इसको आप खुद सही कर लीजिएगा कि मैं हार गया हूं, अहले बैत जीत गए। असल कामयाबी वो है कि दुश्मन अपनी जबान से माने, और बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि ये एक अशरे का टॉपिक है जो मैं अभी पढ़ के आ रहा हूं, तो जरा मैं डिटेल में चला गया तो आज की मजलिस का टॉपिक शुरू नहीं होगा, जो कंटिन्यूएशन है वफात रसूल खुदा की मजलिस का, इसलिए उधर मुझे आना जरूरी है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट। अपने सामने अपने दिमाग में दो पिक्चर्स या दो सीन लेके आई, आशूर और करबला। 11th मुहर्रम को करबला से यह काफिला चला, महमिल नहीं, अमारी नहीं, सवारी नहीं, अकेली सैदानियां इस तरह बिठाई गई हैं कि सरों पे चादर नहीं, हाथों में रस्सियां, बाजू गर्दन से बांधे गए, इस हालत में सज्जाद के गले में तौक है, हाथों में हथकड़ी है, पांव में बेड़ी, और कमर में वो लंगर है कि मेरे मौला की कमर झुक गई, और आगे आगे शहीदों के कटे सर नैजे पे बुलंद, और उनके भी आगे यजीद की आर्मी चल रही, और वह एक अनाउंसमेंट करती हुई चल रही, हाज इस सबाया बनाते रसूलुल्लाह। हर सिटी में, हर टाउन में, हर सबर में ऐलान हो रहा, इनको अच्छी तरह देखो, ये रसूल की बेटियां हैं जो कैदी बना के लाई जा रही। अगर वो खाली ये कहता कि हाज इस सबाया ये कैदी, पब्लिक इतना अटेंशन ना देती, कैदी तो आते रहते, रसूल का नाम लिया, वफात रसूल खुदा की तारीख है ना, रसूल का नाम लिया, हाज इस सबाया बनाते रसूलुल्लाह। अब जिसे इंटरेस्ट नहीं है वो भी रसूलुल्लाह का नाम सुन के उधर देखने पे मजबूर। यजीद की फौज इंसल्ट कर रही, तौहीन कर रही, कब? आशूर के दिन करबला में काफिला जा रहा, और अरबईन सेकंड पिक्चर, अरबईन अपने दिमाग में लेके आइए, वही सेम करबला और वही सेम लेडीज हैं, बच्चे तो कुछ शहीद हुए बट लेडीज जितनी करबला से गई उतनी ही वापस आई अरबईन के दिन। दूसरी पिक्चर, दूसरा सीन, वही करबला और वही जो 11th मुहर्रम को यहां से कहीं से वही लेडीज आ रही हैं। 11th मुहर्रम को भी सिर्फ ओनली वन एडल्ट मेल मेंबर था इस काफिले में, मेरे चौथे इमाम। अरबईन के दिन भी वही एक मर्द आ रहा, कोई फर्क नहीं है। लेकिन आज महमिलें, आज अमारियां, आज हर बीबी फुल हिजाब के अंदर, आज मेरे मौला सज्जाद न तौक है, ना हथकड़ी है, ना बेड़ी है, उसके इफेक्ट्स हैं। कमर झुकी तो जिंदगी भर झुकी रही, गले की तौक का जख्म रहा तो 35 साल बाद जब पांचवें इमाम गुस्ल मैयत दे रहे थे उस वक्त भी ये जख्म नजर आया। लेकिन सज्जाद बड़े एहतराम के साथ आगे के ऊंट पे बिठाए गए। आज यजीद की फौज इसी काफिले के साथ जा रही है, लेकिन फुल रिस्पेक्ट देती हुई पब्लिक से कह रही है रास्ते से हट जाओ, निगाहें नीची कर लो, मोहम्मद की बेटियां आ रही हैं। ये वही एक साल पहले, मैं किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूं, 3 दिन, 40 दिन, 6 महीने, साल, जो हमने अपने बुजुर्ग उलमाए कराम से सुना, एक साल पहले यही फौज थी, पूरे रास्ते कह रही थी आंखें उठा के देखो, हाजे ही सबाया बनाते रसूलल्लाह, ये रसूल की बेटियां। और आज वही फौज कह रही है आंखें नीचे करो, रास्ते से हट जाओ, इनको फुल रिस्पेक्ट दो, ये रसूलुल्लाह की बेटियां। ये जो इतना बड़ा चेंज आया, 11th मुहर्रम को कटे हुए सर नो के नैजा पर थे, अरबईन को अहले बैत ये सारे कटे हुए सर वापस लेकर आए। करबला के शहीदों के सर कहां दफन है, स्पेशली आका हुसैन का सर, डिफरेंट 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 रिवायतें इस मजमे में। मुझे कितने चेहरे ऐसे नजर आ रहे हैं कि जिनसे मेरी अभी रिसेंट मुलाकात नजफ में ही हुई। ये 2-4 चेहरे तो हैं कि हम लोग वादी सलाम यानी नजफ के कब्रिस्तान में मिले, लेकिन नजफ में जाने वाला मौला अली के रोजे पर मौला अली की जियारत पड़ता है समझ में आती। हजरत आदम की जियारत, नूह की जियारत, मौला हुसैन की जियारत भी पढ़ी जाती। रीजन पूछते हैं तो कहते हैं वन ऑफ द रीजन ये है कि एक रिवायत में है कि आका हुसैन का सर करबला में नहीं नजफ में उनके बाबा अली के साथ दफन किया गया। तो बहुत सारी रिवायतें, खासतौर पर सीरिया के हालात का बड़ा गहरा ताल्लुक है लीबिया से, और लीबिया में जो कुछ हुआ वो बहुत ही गहरा ताल्लुक है इजिप्ट से, ये सब इंटरकनेक्टेड है। और इंशाल्लाह किसी एक मजलिस में पढ़ूंगा, यानी इसी वीक में, कई जगह मेरी मजलिसें हैं न्यू जर्सी में, आज आप खुद देख रहे हैं टाइम नहीं है। तो आप मिस्र में मस्जिदुर रास के नाम से आका हुसैन के सर की जरी, कितनी शानदार वो मस्जिद है जहां आका हुसैन का सर दफन है अकॉर्डिंग टू वन ऑफ रिवायत, और ये इतनी वीक रिवायत भी नहीं। लेकिन एक्चुअल हमारे पास जो रिवायत आखिर में बनती वो ये है कि जब अहले बैत सीरिया में डमस्कस में शाम में रिहा किए गए तो एक कंडीशन ये लगाई थी कि हमारे शहीदों के कटे हुए सर हमको वापस किए जाए, और ये सर लेकर चौथा इमाम करबला आया था और अपने हाथ से ये सर बाबा की कब्र में दफन किया था। बल्कि एक आदमी ने एक सवाल मुझसे किया इस साल जियारत में, इस साल, तो चूंकि ये सारा मजमा कुछ जियारत पे जा चुका है और जो जियारत पर अब तक नहीं गए, हर एक का दिल चाह रहा है नियर फ्यूचर में ये सब लोग इंशाल्लाह एक एक करके करबला की जियारत के लिए पहुंचेंगे। तो जो जियारत कर चुके हैं उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, बहुत छोटी छोटी कुछ बातें ऐसी होती हैं, मैं इसलिए मेंबर से पढ़ देता हूं ताकि जब कभी आप मक्का जाएं या मदीना जाएं या करबला जाएं या नजफ जाएं तो ये एक जुमला याद रहे, तो शायद आपको बेनिफिट मिले, मुझे सवाब। वो ये कि वो जब आका हुसैन का सर मौला सज्जाद अपने बाप की कब्र में उतार रहे थे तो ये सर पहले जमीन पे रखा था, फिर बाबा की कब्र में इतनी कब्र खोदी कि ये सर उतारा जाए। जहां पे ये सर रखा था वो रेड कलर का एक स्टोन पत्थर था जो लास्ट ईयर नजर नहीं आ रहा है, लास्ट ईयर तक आका हुसैन की जरी के सरहाने जहां सर है ना, बस सर के फौरन बाद की जगह सुर्ख रंग का एक पत्थर था। वो इस वक्त करबला के म्यूजियम में, करबला के अंदर खुद हरम के अंदर एक बहुत शानदार म्यूजियम, और वो देखने वाला वाकान यानी एक वर्थ है कि आदमी विजिट करे। ये जुमला मैंने इसलिए कहा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि मौलाना हम आका हुसैन की जरी की जियारत के लिए आए हैं, मैक्सिमम टाइम यहां पे रहना चाहते हैं, ये म्यूजियम वगैरह देखने का हमारे पास टाइम नहीं, इसलिए मैंने कहा वर्थ है कि आदमी विजिट करे वहां पर। ये पत्थर यहां से जरी के आगे जहां हमेशा प्रॉब्लम होता था, जिन जिन को इस स्टोन की हिस्ट्री मालूम वो हर वक्त वहीं पे खड़े रहते थे और रश करते थे, क्राउड सारा एक तरफ है बाकी जरी खाली, तो इसको यहां से हटा के म्यूजियम में शिफ्ट किया गया है और जरूर जाइएगा उसकी जियारत कीजिएगा। और वो जो इस साल करबला टीवी के ऊपर 3 दिन तक मुसलसल एक और पत्थर दिखाया जाता रहा जो आशूर के दिन रेड हो गया था, वो भी उसी म्यूजियम में। तो खैर ये मैंने इसलिए कहा कि बहुत से लोग करबला की जियारत को जाते हैं और ये म्यूजियम उनको या मालूम नहीं है या वो ये समझते हैं कि जैसे दुनिया के दूसरे म्यूजियम है वैसा होगा, तो हम वाशिंगटन के म्यूजियम को छोड़ के वहां क्या देखने जाए, नहीं वर्थ है। ये बात तो आ गई किस वजह से, अरबईन अरबईन वही काफिला वापस आ रहा, कितना फर्क है, ये दो सीन दो पिक्चर अपने जहन में लाई। 11 मुहर्रम को कैदी, चादर नहीं, महमिल नहीं, अमारी नहीं, फौज मजाक उड़ाते हुए साथ चल रही है यजीद, अरबईन को वही बीवियां सेम, महमिल भी है, अमारी भी है, पर्दे भी हैं, चादरें भी हैं, वही फौज है। काफिले को चारों तरफ से अपने घेरे में लेकर एक डिस्टेंस रख के चल रही है, कोई अटैक ना कर दे, और डिस्टेंस इसलिए कि सैदानियों के बोलने की आवाज भी इनके कान में ना, इतना एहतराम। और साथ कटे हुए सर, 11 मुहर्रम को नोक नैजा पर थे, अरबईन को ये सर वापस आ रहे हैं, हर सर बहुत एहतराम के साथ कपड़े में लपेट के दिया गया, रैपिंग खुशबू बॉक्स में बंद कर गए, वही सर 11 मुहर्रम को नोक नैजा पे डिस्प्ले किए जा रहे थे नऊजु बिल्ला, आज वही फौज वही यजीद है, कोई चेंज नहीं आई गवर्नमेंट में, इतने एहतराम के साथ लाए, ये खुद अली इस बात की है कि आज यजीद ने मान लिया कि मैं हार गया और ये जीत गए, तो आशूरा हुसैन की विक्ट्री है अमंग हुसैनी हुसैनीस, और अरबईन हुसैन की विक्ट्री है कि दुश्मन हुसैन एनिमी ऑफ हुसैन यजीद भी मान रहा है कि मैं सारे टॉर्चर के बाद हार गया, जैनब जीत गई, सज्जाद जीत गया, हुसैन जीत गया। मगर ये जो अरबईन के पूरे अशरे में मैं इस बात को फिर बहुत डिटेल से बयान करता हूं और मैं इस बात को रिपीट भी कर लूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जी मुझे कभी अरबईन में बुलाइए और मेरी मजलिस सुनिए। हमारे डॉक्टर आफताब साहब बैठे पूरा साल कॉन्टेक्ट में रहते हैं कि मस्जिद अली आइए, मस्जिद अली आइए, मस्जिद अली आइए, और मैं हर दफा उनसे शर्मिंदगी के साथ माजरत करता हूं। बाज औकात इस किस्म के जुमलों से शैतान तो बैठा है ना मोमिनीन के जहन में पेनिट्रेट करता कि इनको या मजलिसे पढ़ना, इसलिए बार बार ये बात रिपीट कर रहे हैं। आप पूछ लीजिए इंतजामिया से, डॉक्टर साहब से, इकबाल जाफरी साहब से, असद सादिक साहब से, ये मुसलसल, लेकिन ये भी इसके अंदर भी तकब्बुर का पहलू ना आ जाए तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये जो यजीदियत को अपनी जबान से मानना पड़ा कि हम हार गए और हमने शिकस्त खाई, तो सवाल यह पैदा होता कि यजीद हुसैन के हाथ से शिकस्त खाता यानी आशूरे के दिन, तो समझ में आता कि हुसैन के पास अब्बास है, हुसैन के पास जुल्फिकार है, हुसैन के पास अकबर है, हुसैन के पास जवाना ने बनी हाशिम। यजीद अगर आशूरे के दिन हारता तो वह ताकत के मुकाबले में हारता, जैनब और सज्जाद ने यजीद को कैसे शिकस्त दी है, कोई तलवार इस्तेमाल की थी, कोई फौजें थी यहां पे, कोई जंग की गई है, मजलूमियत से शिकस्त दी है। तो मजलूमियत से भी कभी जालिम को झुकाया जाता है, करबला का ये मैसेज करबला से चला और आज कोयटा के अंदर जाके पूरा हो रहा, शहदाए कोयटा, जरा सोचिए, जरा सोचिए पाकिस्तान के इस वक्त करंट सिचुएशन के अंदर इतना बड़ा हमारा प्रोटेस्ट, एक पत्थर नहीं फेंका गया, एक बस का शीशा नहीं तोड़ा गया, एक दुकान नहीं बंद कराई गई और किसी को इस प्रोटेस्ट में शरीक होने पे मजबूर नहीं किया गया। कराए पाकिस्तान के तो हालत यह है कि हर आदमी के पास आजकल हथियार हैं। अमेरिकन के अंदर तो शायद फर्स्ट अमेंडमेंट ने राइट दिया है, लेकिन पाकिस्तान में हथियार ममनू है, इलीगल, लेकिन हर एक के पास, हर प्रोटेस्ट में, हर जुलूस में, पूरे पाकिस्तान में, पॉलिटिकल हो, रिलीज हो, रिलीजियस हो, कंडोलेंस का हो, फायरिंग, पथराव, दुकानें तोड़ना, लोगों के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना एक इतनी आम बात है कि अब ये न्यूज भी नहीं बनती। न्यूज बनती है 15 आदमी मर गए, न्यूज बनती है 50 आदमी मर गए, 2 दुकानों के ऊपर उनके ग्लासेस तोड़े गए, कोई न्यूज नहीं बनेगी। लेकिन इतना ये पीसफुल प्रोटेस्ट, और इसके नतीजे में ऐसी जालिम हुकूमत का खात्मा हुआ। ये वही कर्बला का मैसेज है जो चला रहा कि हमेशा ताकत के जरिए से कामयाबी नहीं होती है, परमानेंट कामयाबी वो है जो मजलूमियत के जरिए से जीती जाती है। और कुरान वी एंड मोमिनीन ऑफ क्वेटा आर द पार्ट ऑफ इस्लामिक उम्मा। मैंने इसलिए कहा कि ऐसा ना हो कि क्वेटा का मसला खाली पाकिस्तानियों के बीच में रह जाए, हमारे हिंदुस्तानी हजरात को भी इसमें इतना ही इन्वॉल्व होना है और इतना ही दुख महसूस करना है जो कर भी रहे, अरब, ईरानी, अफगानी। हत्ता ये कि मैंने पाकिस्तानियों में भी ये देखा, टाइम कम है, बातें बहुत सारी एक ही वक्त में जमा हो गई, इसलिए मैं बहुत जरा जल्दी जल्दी भी आगे बढ़ रहा हूं। मैंने पाकिस्तानियों को भी देखा, मैं न्यू जर्सी में, तो मुझे आए हुए कितना वक्त गुजरा, तो फ्लाइट लेट हो गई, और इतनी लेट कि आप हजरात में से अक्सर को कल जहमत हुई। लेकिन उससे पहले जहां था कि बच्चे हमारे जब बड़े हो गए, मसलन 18 एज ग्रुप, 16 का एज ग्रुप, 20 का एज ग्रुप, कहते क्वेटा से हमारा क्या ताल्लुक, वी आर बॉर्न अमेरिकन। अच्छा, मुझे लफ्ज का तर्जुमा भी नहीं पता, बाद में बताइएगा बॉर्न अमेरिकन और अनबॉर्न अमेरिकन में क्या फर्क होता है। लेकिन कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, होंगे हमारे पेरेंट कोई पाकिस्तान वाकिस्तान, कोई कोई तो ऐसे बच्चे भी हैं यहां पे जिनके दादा यहां पे आए थे, उनके बाप भी शायद यही पैदा हुए, उनकी मां भी शायद यही पैदा हो। मसला ये नहीं है कि क्वेटा का वाकया है तो क्वेटा वाले या हजारा कम्युनिटी या पाकिस्तानी दुख महसूस कर, उन पर अगर इसलिए जुल्म हुआ होता कि वो हजारा कम्युनिटी और हजारा लोगों ने 50 साल पहले फुला लोगों की प्रॉपर्टी में कब्जा कर लिया था, आज चांस मिल रहा तो अलग बात थी। उन पर सिर्फ इसलिए अटैक हो रहे हैं कि वो या अली क्यों कहते हैं, वो या हुसैन क्यों कहते हैं, वो कर्बला का गम क्यों मनाते हैं, वो अली की विलायत क्यों क्यों मानते हैं, वो रसूल खुदा के गदीर खुम के ऐलान पर क्यों यकीन करते हैं। सिर्फ एक ही दुश्मनी है, जब वो दुश्मनी तो ये कॉमन मसला हो गया। अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, अरब हो, ईरानी हो, पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी, जिस जिस का इन्वॉल्वमेंट है, जो गदीर को मानने वाला, जो अली को मानने वाला, जो हुसैन को मानने वाला, ये बात भी मैंने इसलिए कही कि अभी बात मुसलमानों से, वरना क्वेटा के वाकये पे नॉन मुस्लिम ने हमसे ज्यादा प्रोटेस्ट किया, कहा यह ह्यूमैनिटी का मसला। आम दिनों में आजकल पाकिस्तान के ऐसे हालात है कि हम अपने यौम हुसैन की गैदरिंग पहले एक क्रिश्चियन को भी बुलाते थे, बहुत पहले, याद होगा कराची वालों को, रणछोड़ लाइन पर कितना बड़ा सैनिकुआ था यहूदियों का, वो लोग भी आते थे, पारसी भी आते थे। पिछले चंद सालों के ऐसे हालात है कि कोई किसी गैदरिंग में आने को तैयार नहीं, हमारे कहे बगैर क्रिश्चियन ने रैलीज निकाली और कैंडल जलाई है क्वेटा वालों के लिए, हमें भी पता नहीं चला। जब वो अपना प्रोटेस्ट कर चुके तो पता चला, क्योंकि मसला ह्यूमैनिटी का है। तो इस गम को गम समझिए, और इसके साथ अगला मेरा जुमला, जहां से मैं आज के असल टॉपिक पे आ रहा हूं। तो खैर, आप हजरात तो मुझे काफी अर से बात सुन रहे हैं तो खामोश बैठे, कहीं और मजलिस पढ़ता तो लोग कहते ठीक है मौलाना अब आप असल टॉपिक पे आ रहे, टाइम आपसे अब से शुरू करेंगे आप, ये जो खुतबा पढ़ा वो टाइम भी इस मजलिस का हिस्सा है, घबरा जाते हैं लोग, ऐसा ना हो कि यहां से अब ये अपनी घड़ी स्टार्ट करें और अब 1 घंटा और ले। नहीं, मैं आपके वीक डे में आने को अप्रिशिएट कर रहा हूं, मुझे कतन तवक्को नहीं कि वीक डे के अंदर इस, नहीं, वो तो आप हजरात की मोहब्बत है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहिबान बैठे मेरे सामने जिन्होंने मुझसे बार बार प्रेशर डाल के रिक्वेस्ट किया, मैं उनकी रिक्वेस्ट को मानूंगा भी और ज्यादा वक्त लेके आऊंगा तो ज्यादा इत्मीनान से बात कर सकूंगा। ये आज की तरह से हर चीज में जल्दी नहीं होगी, लेकिन वही एक जुमला जिसके बाद मैं असल टॉपिक से कनेक्ट कर रहा हूं, और वो ये कि कुरान करीम ने भी, ये तो मैंने कर्बला के हवाले से बताया कि असल विक्ट्री और कामयाबी वो है जो मजलूमियत के